डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 8 अधिनियम 3 से 5 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम अध्याय 3 से 5 पर सत्र 8 है। परिचय में मैंने ऐतिहासिक मुद्दों पर बात करने में काफी समय बिताया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 2 में मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया गया, इसलिए मुझे ये सभी चीजें करना पसंद है। लेकिन प्रेरितों के काम की अधिकांश पुस्तकों में मैं विशेष रूप से, यद्यपि विशेष रूप से नहीं, आपको कुछ प्राचीन पृष्ठभूमि देने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने जा रहा हूं, जो आपको पाठ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। और इसका मुख्य कारण यह है कि यह वह हिस्सा है जो आपको अपने आप नहीं मिलेगा। मैं मान रहा हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखने के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिबद्ध हैं, तो आप इतने भी प्रतिबद्ध हैं कि आप पहले से ही अधिनियमों की पुस्तक पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपकी सराहना भी करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो आप बहुत प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं। तो अधिनियम अध्याय 3 यीशु के नाम पर उपचार से संबंधित है। श्लोक 1 से 10 तक शुरू होता है। यह मूल रूप से हमें 243, 44, 46 और 47 में हमारे पास क्या है इसका एक उदाहरण देता है, जहां चांदी और सोने ने अपने संसाधनों को छोड़ दिया है। संकेत और चमत्कार जैसे 243, 46 और 47 बार एक साथ प्रार्थना। और यह चमत्कार किस ओर ले जाता है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, संकेत अक्सर ऐसा करते हैं, यह एक उपदेश के अवसर की ओर ले जाता है। तो कुछ पृष्ठभूमि को देखते हुए, वे इस आदमी को मंदिर के द्वार पर या मंदिर के द्वारों में से एक गेट ब्यूटीफुल पर पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि विकलांगों को इसराइल के दरबार में जाने से रोक दिया गया था, वे महिलाओं की अदालत से आगे नहीं जा सके। यह सच है या नहीं, इसके कुछ सबूत हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मंदिर के रखवाले उन चीजों पर कितने कठोर थे। यदि ये वे लोग होते जिन्होंने मृत सागर स्क्रॉल लिखे होते, तो उन्हें निश्चित रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया होता। लेकिन किसी भी मामले में यह भीख मांगने के लिए एक लाभदायक जगह थी, क्योंकि लोग हमेशा गेट से आते जाते थे। लोग मंदिर में प्रवेश करते समय पवित्र होना चाह रहे थे। यहूदी धर्म में बहुत उच्च कार्य नीति के साथ साथ उच्च दान नीति भी थी। तो यह समझा गया कि लोग एक तरह से शर्मिंदगी से नहीं गुजरेंगे। खैर हाँ, इसे भीख मांगना शर्म की बात माना जाता था, जब तक कि उन्हें वास्तव में ऐसा न करना पड़े। और लोग भीख मांगने वालों के प्रति बहुत परोपकारी होते थे। खैर, वह उनसे पैसे मांगता है। उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास जो कुछ है, वे उसे कुछ अधिक महत्वपूर्ण, पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ देते हैं। उन्होंने कहा, नाजरेत के यीशु मसीह के नाम पर उठो और चलो। अब यीशु के नाम में इसका क्या मतलब है? विभिन्न प्रस्ताव आए हैं, लेकिन सबसे संभावित प्रस्ताव, जो प्रत्येक में से सर्वश्रेष्ठ को पकड़ता है, वह संभवतः यीशु के अधिकृत एजेंट के रूप में है। वे यीशु के अधिकार पर कार्य कर रहे हैं। वे यीशु के लिए कार्य कर रहे हैं। अधिनियम 1:1 कहता है कि पहला खंड उन सभी के बारे में था जो यीशु ने करना और सिखाना शुरू किया था। अब यह साम्यवाद हो सकता है, जिसका मतलब बस वह सब कुछ है जो यीशु कर रहे थे और सिखा रहे थे। लेकिन ल्यूक के अन्यत्र उपयोग और अधिनियम 1:1 में इसकी स्थिति को देखते हुए, मेरा संदेह यह है कि संभवतः खंड 1 का अर्थ वही है जो यीशु ने करना और सिखाना शुरू किया था। खंड 2 बताता है कि कैसे यीशु ने शिष्यों के माध्यम से कार्य करना और शिक्षा देना जारी रखा। तो यह प्रेरितों के कार्य नहीं है, जो वास्तव में वैसे भी एक बाद का शीर्षक था, लेकिन यीशु के कार्य उनके कुछ अनुयायियों के माध्यम से जारी हैं। प्रेरितों के काम 9 में यीशु तब कार्य कर रहा है जब पीटर चाहता है कि कोई व्यक्ति ठीक हो जाए। पत्रस कहता है, एनियास, यीशु तुम्हें चंगा करता है। तो यह मान्यता है कि यह कार्य यीशु ही कर रहे हैं। और यहाँ पत्रस अंततः इस आदमी को ठीक करने का श्रेय यीशु और यीशु के नाम को देने जा रहा है। इसीलिए अध्याय 3 और श्लोक 12 में जब वे कह रहे हैं, भीड़ उन्हें देख रही है, पत्रस कहता है, तुम हमें ऐसे क्यों देखते हो जैसे कि हमारी अपनी शक्ति या पवित्रता से यह मनुष्य पूर्ण हो गया है। यह नासरत के यीशु के नाम से है जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था कि यीशु ने इस मनुष्य को पूर्ण बनाया है। यदि ईश्वर हमारे माध्यम से कार्य करता है तो आइए उसे इसका श्रेय दें। यदि हम इसका श्रेय स्वयं लेते हैं और स्वयं की ओर देखते हैं तो संभावना है कि हम उन चीजों को करने में सक्षम नहीं रहेंगे क्योंकि यह हमसे नहीं आती हैं। यह उससे आता है। अब हम पीटर के संदेश पर कुछ नोट्स देखने जा रहे हैं। पत्रस ने उन्हें यीशु का नाम उपदेश दिया जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। कॉरपोरेट अपराध की बात करते हुए उनके अधिकांश श्रोता वास्तव में वहां नहीं थे, लेकिन यरूशलेम की भीड़ वही थी जो ल्यूक अध्याय 22 में यीशु की फांसी के लिए चिल्ला रही थी। इसलिए पीटर का संदेश वह बताता है कि कैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन भगवान ने अपने सेवक की महिमा की है, यीशु अध्याय 3 और पद 13। और नौकर को महिमामंडित करने की वह भाषा ग्रीक अनुवाद में यशायाह 52:13 को प्रतिध्वनित करती है जहां नौकर को ऊंचा और ऊंचा किया गया था, उनका महिमामंडन किया गया। जॉन के सुसमाचार में क्रॉस के संदर्भ में इसका कई बार उपयोग किया गया है। यहां यह विशेष रूप से उच्चाटन पर लागू होता प्रतीत होता है। और यह भी पत्रस यीशु को पवित्र और धर्मी भी कहता है। खैर, अगर वह यशायाह 52:13 के संदर्भ में सोच रहा है तो यशायाह 53:11 में यह धर्मी सेवक की बात करता है। उसे अपने पापों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, भले ही यशायाह 40 में पहले इसराइल को अपने पापों के लिए दोगुना भुगतान मिल रहा था। अध्याय 3 और श्लोक 15 में पत्रस पुरातत्वविदों की बात करता है। यह भाषा अक्सर नायकों, अग्रदूतों और शहरों के संस्थापकों के लिए उपयोग की जाती थी। यीशु निश्चित रूप से आंदोलन के संस्थापक हैं, लेकिन वह एक अग्रणी की तरह भी हैं जिन्होंने अपने पीछे चलने वालों के लिए रास्ता काटा, जिन्होंने अपने पीछे चलने वालों के लिए रास्ता बनाया। वह मृतकों में से जीवित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। लेकिन इस शब्द का मतलब इनमें से किसी भी प्रकार की चीज से हो सकता है, और यहां यह संभवतः उनमें से किसी प्रकार का संयोजन है। इसीलिए आप इसे अलग अलग अनुवादों में इतने अलग अलग तरीकों से अनुवादित देखते हैं। इसका उपयोग वास्तव में सेप्टुआजेंट में कुलों के नेताओं के लिए किया गया था। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेता है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने अनुयायियों के लिए एक नया रास्ता बना रहा है। पीटर 5:31 में उसी भाषा का उपयोग करता है। इसका प्रयोग इब्रानियों 2:10 और 12:02 की पुस्तक में भी कुछ बार किया गया है। यहां 3:14 में विडंबना है। उन्होंने एक हत्यारे को स्वीकार कर लिया जब उन्होंने कहा, हम बरब्बा को चाहते हैं, इस मनुष्य को नहीं। उन्होंने एक हत्यारे को स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने जीवन के लेखक, संस्थापक, जीवन के प्रणेता को मार डाला। यही विडंबना है। और फिर इससे भी बड़ी विडंबना, वह मरा नहीं। 3:17 में पत्रस कहता है, मैं जानता हूं कि अज्ञानता के कारण तूने ऐसा किया। खैर, अज्ञानता प्राचीन कानून और प्राचीन विचार में दोष को खत्म नहीं करती बल्कि उसे कम कर देती है। और इसलिए वह कह रहा है, मैं जानता हूं कि तुम नहीं जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे, जैसा कि यीशु लूक 23 में क्रूस पर कहते हैं, पिता उन्हें माफ कर दो। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। साथ ही पत्रस यह भी बताता है कि कैसे वादा किया गया मसीहाई पुरुद्धार आया है, कुछ ऐसा जिसके बारे में सभी भविष्यवक्ताओं ने बात की थी। खैर 3:18 में जो भाषा वहां इस्तेमाल की गई है, बाद में यहूदी शिक्षकों ने कहा कि भविष्यवक्ताओं के सभी संदेश इस विषय या उस विषय से संबंधित हैं। भविष्यवक्ताओं ने जिन विषयों पर बात की उनमें से एक था मसीहाई युग या यरूशलेम की पुनर्स्थापना, और पीटर उनसे पुनर्स्थापना के इस युग के बारे में बात करने वाला है। 3:19 में वह उन सभी चीजों की बहाली की बात करता है जिनका वादा भगवान ने किया था। खैर उन सभी चीजों की बहाली क्या है जिनका वादा परमेश्वर ने किया था? ईश्वर ने एक नई सृष्टि का वादा किया था, लेकिन उन्होंने भविष्यवक्ताओं में यह भी कहा था कि इससे पहले पश्चाताप होगा, इसराइल का पश्चाताप इससे पहले होगा। पीटर इसी की मांग कर रहा है, और पुनर्स्थापन का एक काल आएगा जब इसराइल परमेश्वर की ओर मुड़ेगा। होशे 14:1-7, जोएल 2:18 से 3:01, यह एक अंग्रेजी अनुवाद है। मुझे लगता है यह व्यवस्था विवरण 4:30-31 में भी निहित है। यहूदी शिक्षकों ने माना कि इसराइल द्वारा पश्चाताप बहाली से पहले होगा। कुछ लोगों ने सोचा, ठीक है, हम पश्चाताप करके बहाली के समय को तेज कर सकते हैं। कभी कभी बाद में रब्बी कहते थे कि क्या सारा इसराइल एक ही दिन में सप्त का दिन एक साथ मनाएगा, या क्या पूरा इसराइल ऐसा करेगा या पूरा इसराइल वैसा करेगा। लेकिन अंततः यदि संपूर्ण इसराइल पश्चाताप करेगा तो परमेश्वर पुनर्स्थापना का समय लाएगा। अन्य रब्बियों ने कहा, ठीक है, तुम्हें पता है समय पूर्व निर्धारित है, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यह दोनों हो सकते हैं। इसे पुनर्स्थापना और पश्चाताप के समय से जोड़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने पुनर्स्थापना का समय पूर्व निर्धारित किया था, लेकिन उसने इसे इसराइल के पश्चाताप के साथ भी पूर्व निर्धारित किया था। जो भी मामला हो, यहाँ पत्रस उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहता है और कहता है कि पुनर्स्थापन का समय आएगा। खैर वह क्या था जिसे पुनर्स्थापित किया जाने वाला था? सभी चीजों की बहाली का समय। कुछ अन्य जातियों ने चक्रों के ब्रह्मांड के बारे में बात की, विशेषकर स्टोइक्स ने। उनका मानना था कि ब्रह्मांड समय समय पर आग से नष्ट हो जाता है और एक नए ब्रह्मांड के रूप में पुनर्जन्म लेता है, और वह केवल परम देवता ही रहेगा। बाकी सब कुछ आग में घुलने वाला था और फिर दोबारा दोहराया जाने वाला था, लेकिन यह वास्तव में शाश्वत नहीं था, इसे फिर से शुरू किया जा रहा था। यह यहाँ जो दिख रहा है उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पीटर यहूदी श्रोताओं से बात कर रहे हैं। पुनर्स्थापना की यहूदी अपेक्षा में पृथ्वी पर सृजन, शांति और समृद्धि की बहाली शामिल थी, यशाया अध्याय 11, शेर और मेमने के साथ, और साथ ही एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, यशाया 65:17। इसके अलावा एक नया यरूशलेम होगा, यशाया 65:18-19 और 66:8-11। लेकिन अंततः शायद यहाँ प्राथमिक विचार इस तरह से संबंधित है कि पुनर्स्थापना शब्द या पुनर्स्थापना के लिए संबंधित शब्द का उपयोग पहले ही किया जा चुका है अधिनियमों की पुस्तक में। प्रेरितों के काम अध्याय 1:7 में याद रखें कि शिष्यों ने यीशु से पूछा था, क्या यही वह समय है जब आप इसराइल के राज्य को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं? खैर शिष्यों को अब भी इसकी परवाह है। स्वाभाविक रूप से मेरा मतलब है वे 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल की 12 जनजातियों का न्याय करेंगे, है ना? इसलिए यह उनके लिए महत्वपूर्ण है और यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें वे उपदेश दे रहे हैं। परमेश्वर के लोगों की पुनर्स्थापना पुराने नियम में इसराइली भविष्यवक्ताओं का एक केंद्रीय संदेश था। खैर, वह उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है ताकि ताजगी का वह समय आ सके जिसका वादा भविष्यवक्ताओं ने किया था। यहां तक कि प्रेरितों के काम अध्याय 28 से भी इसराइल समग्र रूप से नहीं बदला है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी यहूदी वहां नहीं आया, लेकिन यह सच नहीं है। अधिनियमों की पूरी पुस्तक में कई यहूदी लोग बदल गए, लेकिन यह समग्र रूप से यहूदी लोग नहीं थे। इसलिए यह वह नहीं था जो बहाली का वादा किया हुआ समय लाएगा। हम रोमियो अध्याय 11 में पॉल को ऐसा ही कुछ कहते हुए देखते हैं। वास्तव में पॉल का मानना था कि अन्य जातियों के लिए उसका मंत्रालय वास्तव में ईश्वरीय योजना का हिस्सा था, क्योंकि यशायाह ने अन्य जातियों को लाने के बारे में बात की थी। और जब अन्य जाति इसराइल के परमेश्वर की ओर मुड़े तो यह यीशु में विश्वास के माध्यम से आ रहा है। इसराइल को इसे देखना चाहिए और कहना चाहिए, वाह, यीशु को वादा किया गया मसीहा होना चाहिए, क्योंकि देखो, यहां तक कि अन्य जाति भी अब एक सच्चे ईश्वर की ओर मुड़ रहे हैं। और पॉल का मानना था कि अपने लोगों को ईर्ष्या के लिए उकसाने से, यह पहचानने के लिए कि यह यीशु के माध्यम से है कि ये गैर यहूदी आ रहे हैं, कि उसके लोग मसीहा में विश्वास करने लगेंगे जब अन्य जातियों की पूर्णता पर्याप्त समय दिए जाने के बाद आएगी। सभी राष्ट्रों में अच्छी खबर चली गई थी कि इसराइल इसे देखेगा और यहूदी लोग समग्र रूप से ईश्वर में विश्वास करेंगे। रोमियो 11:26 में पूरे इसराइल की भाषा को बचाया जाएगा। वास्तव में यह हेब्रोन 10:1 में मिशना में आपके पास मौजूद भाषा के समान है, जहां बाद में रब्बियों ने इस बारे में बात की थी कि पूरे इसराइल को कैसे बचाया जाएगा और फिर अपवादों की सूची बनाई जाएगी। तो दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है समग्र रूप से इसराइल, समग्र रूप से यहूदी लोग मसीहा में विश्वास की ओर मुड़ना। यह उस तरह से कार्यान्वित नहीं हुआ जिस तरह से पॉल ने कल्पना की थी, कम से कम बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि अन्य जातियों, गैर यहूदी ईसाइयों ने उस पर ध्यान नहीं दिया जो पॉल ने उस संदर्भ में अन्य जाति ईसाइयों से भी कहा था। गिरी हुई शाखाओं को नीचे मत देखो, उनके विरुद्ध अपने आप को वैसा ही घमंड मत करो जैसा उन्होंने एक बार तुम्हारे विरुद्ध किया था। लेकिन वास्तव में अधिकांश इतिहास में अन्य जाति चर्च ने कहा, नहीं, हमने इसराइल का स्थान ले लिया है। और जहां परमेश्वर अब वास्तव में कार्य कर रहा है वह गैर यहूदी चर्च में है, और परमेश्वर वास्तव में यहूदी लोगों की परवाह नहीं करता है, और वह भी संतुलित नहीं था। और इसलिए हाल के दिनों में कई यहूदी लोग मसीह में विश्वास करने लगे हैं। कुछ का अनुमान 100,000 है, कुछ का अनुमान उससे कई गुना अधिक है। यह अभी भी दुनिया में यहूदी लोगों का बहुत छोटा हिस्सा है। शायद पहली, दूसरी या तीसरी शताब्दी के बाद से यह इतिहास में पहले से कहीं अधिक बड़ा है, लेकिन पहली शताब्दी में शायद यह अधिक प्रतिशत था। इसलिए जब हम अवशेष के बारे में सोचते हैं तो अवशेष के साथ समस्या यह नहीं है कि यह बहुत छोटा होना चाहिए। बचे हुए लोगों के साथ मुद्दा यह है कि ये समग्र रूप से यहूदी लोग नहीं हैं। और इसलिए कुछ चीजें जिनकी पॉल ने कल्पना की थी और पत्रस जिनकी यहां आशा कर रहा था, वे अभी तक घटित नहीं हुई हैं। लेकिन पीटर इसके लिए काम कर रहा था और इसके लिए काम करना अच्छी बात है। अधिनियमों का जोर सभी लोगों तक जाने वाली खुशखबरी पर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विरासत को छोड़ दिया गया है या उन यहूदी लोगों में रुचि को भुला दिया गया है जिनसे यह संदेश शुरू हुआ था। परमेश्वर के प्रेम का शुभ समाचार सभी लोगों के लिए है, और ईश्वर का वह प्रेम विशेष रूप से मसीह में व्यक्त होता है। खैर, वह कहता है कि परमेश्वर ने वादा किया था कि वह मूसा जैसा भविष्यवक्ता खड़ा करेगा। और इसमें वह व्यवस्था विवरण अध्याय 18 श्लोक 15 और 18 का हवाला दे रहा है। यह एक आशा थी जिसे न केवल यहूदी लोगों द्वारा मनाया जाता था। बाद में रब्बियों ने एक छिपे हुए मसीहा के बारे में भी बात की जो मूसा की तरह होगा, जो प्रकट होने से पहले छिपा होगा। लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे सामरी लोगों द्वारा भी मनाया जाता था। इसे मृत सागर स्क्रॉल में भी मनाया जाता है। तो यह कुछ ऐसा था जिस पर पीटर के समय में बहुत जोर दिया गया था। वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मूसा या जोशुआ के चमत्कारों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। लेकिन लोग एक नए मूसा और यीशु की उम्मीद कर रहे थे जिन्होंने जंगल में 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। अंततः यीशु ही वह परम भविष्यवक्ता था। जब मैं परम पैगंबर कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं, अच्छा, क्या यीशु अंतिम पैगंबर थे? और आप जानते हैं, कुछ अन्य धर्म कहते हैं, नहीं, हमारे पास उसके बाद भी पैगंबर हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु अंतिम पैगंबर हैं, बल्कि वे परम पैगंबर हैं। आप जानते हैं, अधिनियमों की पुस्तक में भविष्यवक्ता थे, लेकिन यीशु अंतिम भविष्यवक्ता हैं। मूसा कहता है, तुम उस पर ध्यान दोगे। 3:24-26 में पत्रस श्लोक 24 में शमूएल से आगे की भविष्यवाणियों के बारे में बोलता है। भविष्यवक्ताओं ने यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणियां दी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? खैर, उसने अभी अभी मूसा की तरह भविष्यवक्ता होने की बात की है, और मूसा एक अस्वीकृत उद्धारकर्ता था। हमें इसके बारे में अधिनियम 7 में अधिक स्पष्ट रूप से पता चलता है, जहां यह संबंध बनता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही हम देखते हैं कि जिन अगुवों को परमेश्वर ने खड़ा किया, उन्हें ऊंचा उठाने से पहले आम तौर पर कैसे कष्ट सहना पड़ा। तो वहां एक पैटर्न है जिसे हम भविष्यवक्ताओं में देखते हैं। और हमारे पास उस धर्मी पीड़ित के बारे में भी ग्रंथ हैं, जिनमें से सबसे धर्मी व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट रूप से धर्मी पीड़ित होगा। हमारे पास यशायाह 53 भी है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और अन्य मार्ग इसी प्रकार शमूएल के बाद से भविष्यवक्ताओं यहूदी लोगों ने समझा कि उन्होंने मसीहाई युग की भविष्यवाणी की थी। हमारे पास पुराने नियम में ऐसे बहुत से ग्रंथ नहीं हैं जो दाऊद के शासक पुत्र के बारे में बात करते हों। मेरा मतलब है, जब मैं कहता हूं कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, तो यह उतना नहीं है जितना आप यहां पीटर द्वारा कही गई बातों से उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप विशेष रूप से और विशेष रूप से उन ग्रंथों की तलाश कर रहे हैं जो डेविड के शासक पुत्र के बारे में बात करते हैं, दाऊद के शासक पुत्र के बारे में उन ग्रंथों में से यह स्पष्ट है कि यह दाऊद का वंशज है, स्वयं दाऊद का नहीं। उनमें से एक ऐसा है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह दिव्य है। और यिर्मयाह 23 में एक और, जिसका अर्थ संभवतः यह है कि कम से कम यशायाह में पहले की भविष्यवाणी के साथ संयोजन में लिया गया है। लेकिन ये भविष्यवाणियां नए मूसा के बारे में हैं, जो कष्ट उठाएगा और फिर उसे ऊंचा किया जाएगा। इसमें मसीहाई युग का वादा, पुनर्स्थापना का वादा, वे सभी चीजें शामिल हैं जिन्हें करने के लिए मसीहा आया था। और इसलिए यह सबसे पहले उन लोगों को पेश किया जाता है जिनके पास मसीहा सबसे पहले आया था। वह कहते हैं, आप पैगंबरों के बच्चे या उत्तराधिकारी हैं, जो इस बात पर विचार करते हुए काफी अच्छा है कि यीशु ने अपने कुछ वार्ताकारों को कैसे संबोधित किया। और ल्यूक अध्याय 11 और श्लोक 47 में आप जानते हैं, आप उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार डाला। और फिर अधिनियम 7:5-2 में स्टीफन इसे कैसे कहते हैं कि पत्रस बहुत दयालु है क्योंकि वह उन लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने अज्ञानता में कार्य किया। और यह कॉरपोरेट अपराध बोध है और वह उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। और उनके कई नायक ऐसा करते हैं। वह अब्राहम के आशीर्वाद की बात करता है। खैर, इब्राहीम का यह आशीर्वाद जिसके बारे में वह उनके पास आने की बात करता है, इब्राहीम का यह आशीर्वाद उत्पत्ति 12:3 के अनुसार सभी लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद था, राष्ट्रों के लिए एक आशीर्वाद था, लेकिन यह उनके माध्यम से आना था। और इसीलिए वह कहता है कि नौकर, जिसका उल्लेख उसने पहले ही 3:13 में किया है, पहले उनके लिए आशीर्वाद बनने के लिए भेजा गया था। और निस्संदेह सबसे पहले ल्यूक गैर यहूदी मिशन का संकेत दे रहा है जो बाद में आता है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 में उन पर मंदिर के अधिकारियों द्वारा दोषारोपण किया गया है। खैर, मंदिर प्राधिकारियों द्वारा उन पर दोषारोपण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अध्याय 4:2 में कहा गया है कि वे यीशु को मृतकों में से पुनरुत्थान का उपदेश दे रहे हैं। फरीसियों ने पुनरुत्थान के बारे में बात की। वे और सदूकिया पुनरुत्थान के बारे में दृढ़ता से असहमत थे। हो सकता है कि इससे सदूकियों को परेशानी हुई हो, लेकिन वास्तव में इससे उन्हें कोई खतरा नहीं था। लेकिन यीशु में पुनरुत्थान का उपदेश अलग था, क्योंकि यह केवल भविष्य के लिए एक सैद्धांतिक आशा नहीं थी, लेकिन यह अनुभवजन्य साक्ष्य था कि वह भविष्य पहले ही इतिहास में टूट चुका था। समय आ गया था और परमेश्वर अपने लोगों से अपनी मांगे रख रहा था, और उसके लोगों के जो अगुवे नाजायज थे, वे अपने पद से बेदखल होने वाले थे। प्रेरित जो 12 सिंहासनों पर बैठे होंगे, 12 जनजातियों का न्याय करेंगे, नए नेता बनने जा रहे थे, और सदूकी स्पष्टतः इससे प्रसन्न नहीं थे। सदूकियों ने मंदिर के पदानुक्रम और अधिकांश निवासी पुरोहित वर्ग को नियंत्रित किया। इसमें कहा गया है कि मंदिर रक्षक का कप्तान आया। मंदिर रक्षक एक स्थानीय पुलिस बल था जिसे लेवियों से बना रोमनों द्वारा अनुमति दी गई थी। खैर, हम कहेंगे वे दोपहर करीब 3 प्रार्थना के लिए आए थे, तो सूर्यास्त करीब आ रहा होगा और इसीलिए उन्हें अंदर रखना होगा, उन्हें रात भर रोकना होगा। वे नहीं कर सकते, शाम होने वाली है और लोगों को काम करना बंद कर देना चाहिए, और वे रात की बैठक नहीं बुलाने जा रहे हैं जैसा कि उन्होंने यीशु के साथ आपातकालीन बैठक के दौरान किया था। और इन महायाजकों अन्ना और कैफा के नामों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अन्नास जोसेफ कैफा के ससुर हैं। अन्नास महायाजक थे। वह अभी भी पर्दे के पीछे से बहुत सी चीजों को नियंत्रित करते थे। उनका उत्तराधिकारी न केवल उनका दामाद बल्कि उनके 5 भी बने। इस प्रकार वह महान शक्ति की स्थिति में था। कैफा 18:36 तक आधिकारिक महायाजक था। तो ये वे लोग हैं जो सत्ता के आदि हैं। हमारे अन्य सभी यहूदी स्रोतों के अनुसार वे निर्दयी थे। कभी कभी वे लोगों को डंडों से पीटते थे। मृत सागर स्क्रॉल में उन्हें नापसंद किया गया था। फरीसियों ने उन्हें नापसंद किया, और जोसेफस ने हर तरह की बुरी बातें बताई कि कैसे इनमें से कुछ महायाजक लोगों का शोषण कर रहे थे। ल्यूक उच्च पुजारियों के लिए बहुवचन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में कुलीन पुजारी, उच्च पुजारी परिवार, सभी को पुराने नियम के मुख्य पुजारी रोश हाकोहेन के विपरीत इस अवधि के मुहावरे में उच्च पुजारी कहा जाता था। आपके पास सब कुछ था। जोसेफस इस तरह से एक पूरे महायाजक परिवार की बात करता है। खैर, हम यहाँ पदानुक्रम के अधिकार के बजाय ईश्वर के अधिकार को भी देखते हैं। वे यहाँ पदानुक्रम को चुनौती देते हैं, और जब उन्हें मंदिर में उपदेश देने के लिए दोषी ठहराया जाता है, और मूल रूप से क्योंकि वे सदूकियों के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, तो वे बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, आपने इस आदमी को क्रूस पर चढ़ाया, आपने इस आदमी को मार डाला। ठीक है, अगर इस आदमी को देशद्रोह के लिए फांसी दी गई थी तो उसके पक्ष में खड़े रहना और उस पर फैसला सुनाने वालों को चुनौती देना देशद्रोह है। लेकिन प्राचीन दुनिया में इसे बहुत असभ्य माना जाता था। इसे कृतघ्नता का प्रतीक माना जाता था, जिसे कुछ लोग ग्रीको रोमन समाज में सर्वोत्कृष्ट पाप मानते थे, उपकार का बदला चुकाना, अच्छे काम का बदला बुराई से देना। आपको उपकार का बदला कृतज्ञता के साथ, सम्मान के साथ देना चाहिए था। और पीटर यहाँ जिस भाषा का उपयोग करता है वह कहता है, ठीक है, अगर हमें इस आदमी को दिए गए उपकार के कारण हिसाब देने के लिए यहाँ बुलाया गया है तो ग्रीको रोमन दुनिया में उपकार एक प्रमुख मुद्दा था। आपके पास जगह जगह इसका जश्न मनाते हुए शिलालेख हैं, जहाँ दानकर्ता इमारतें बनाते थे या कभी कभी लोगों को नागरिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता था इत्यादि। यदि कोई परोपकारी था तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए था। युग अध्याय 22 उस बारे में बात करता है, जहां अन्य जातियों में सबसे महान लोग परोपकारी हैं। यीशु कष्ट सहने और सेवा करने के लिए आए, लेकिन यीशु भी आए और एक यूर्जेटेस, एक परोपकारी के रूप में कार्य किया, जिससे यह पता चलता है कि कैसे नासरत के यीशु, ल्यूकेट्स में नासरत के यीशु अच्छा करते रहे, प्रेरितों 10:38 उपकार करते रहे। खैर, अब शिष्य यीशु के नाम पर कार्य कर रहे हैं और यीशु के नाम के माध्यम से इस व्यक्ति पर उपकार किया गया है और इसके लिए शिष्यों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अब यह आदमी, वह कहता है, यदि आप जानना चाहते हैं कि यह आदमी कैसे पूर्ण बना, तो यहाँ पूर्ण बनाने की भाषा बचाने के लिए वही ग्रीक शब्द है। तो पीटर के आगे बढ़ने पर यह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्हें दोषी ठहराया जाएगा, उनसे जो मांग की जाएगी वह यह है कि आपने यह किसके नाम पर, किसके अधिकार से किया है। आप जानते हैं, आपको इन मंदिर अदालतों में बोलने, भीड़ खींचने और हमारी सत्ता को चुनौती देने का अधिकार किसने दिया? और पत्रस कहता है, यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो तो यह मानव निर्मित संपूर्ण वस्तु किसके नाम से बनी थी, यह मनुष्य किसके नाम से अपनी बीमारी से बचाया गया था, यह उपकार किसके नाम से किया गया? यह नाजरेत के यीशु के नाम से है, जिसे आपने क्रूस पर चढ़ाया था। वास्तव में स्वर्ग के नीचे कोई अन्य नाम नहीं दिया गया है, जो पुराने नियम का एक अच्छा मुहावरा था। मानवता के बीच कोई अन्य नाम नहीं है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को बचाया जा सके, जिसके द्वारा मोक्ष आ सके, नासरत के यीशु के नाम के अलावा। इसलिए वह शारीरिक उपचार से मोक्ष की ओर तेजी से आगे बढ़ता है, जोएल का हवाला देते हुए, प्रेरितों 2:21 के अनुसार, इसराइल और उन व्यक्तियों के लिए वादा किया गया उद्धार जो प्रभु के नाम को पुकारेंगे और बचाए जाएंगे। इस आदमी को बचा लिया गया। अब यदि आप बचाए जाने के लिए यीशु का नाम पुकारेंगे तो आप बचाए जा सकते हैं। इससे एक बात सामने आती है जो हमें अक्सर नए नियम में कहीं और मिलती है। निश्चित रूप से आपके पास यह यूहन्ना 14:06 में है। यीशु के अलावा पिता तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के पास कोई अन्य सच्चाई या कुछ अन्य अच्छी चीजें नहीं हैं, लेकिन मानवता की स्थिति इतनी निराशाजनक है कि केवल यीशु के माध्यम से ही हम ईश्वर के साथ पूरी तरह मिलमिलाप कर सकते हैं। अब यह केवल यहीं तक सीमित बात नहीं है। आपने प्रेरितों के काम की पूरी किताब में सुसमाचार का उपदेश पढ़ा। सुसमाचार का प्रचार यह मानता है कि लोगों को यीशु की आवश्यकता है और यीशु के माध्यम से ही उन्हें बचाया जा सकता है। पॉल के पत्रों और पूरे नए नियम में आपके पास एक ही बात है। इस विचार को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। आपको विश्वास के द्वारा उचित ठहराया जा सकता है। आप फिर से जन्म ले सकते हैं, ऊपर से जन्म ले सकते हैं, आत्मा से जन्म ले सकते हैं, पॉल कहते हैं, साथ ही जॉन भी। आपको अंधकार के अधिकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। आपको मृत्यु से जीवन की ओर ले जाया गया। इसे विभिन्न तरीकों से रखा गया है, लौकिक बंधन से लेकर बुरी शक्तियों तक पहुंचाया गया है। इस मुक्ति के सभी प्रकार के विभिन्न पहलू हैं, लेकिन हर मामले में धारणा यही है कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। लोग खो गए और फिर मिल गए। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई जानता है कि वास्तव में क्या हुआ था। मेरा मतलब है, यदि आप एक ईसाई घर में पले बढ़े हैं तो आप जानते हैं यह धीरे धीरे आप पर हावी हो गया होगा। हो सकता है कि आप इसे बहुत पहले से ही स्वीकार करते आ रहे हों, लेकिन मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो ईसाई घर में बड़ा नहीं हुआ और बाद में परिवर्तित हो गया, यह एक बहुत ही नाटकीय और कठोर बदलाव था। मैं आपको वह तारीख बता सकता हूँ जब यह घटित हुआ और दोपहर का अनुमानित समय जब यह घटित हुआ, लेकिन किसी भी मामले में मुद्दा यह है कि यीशु ही उद्धार करता है और वह ही एकमात्र उद्धार करता है। अब यह उस संस्कृति में उतना ही अपमानजनक था जितना आज कई लोगों के लिए है। ग्रीको रोमन दुनिया में यह पहले से ही आक्रामक था। यहूदी लोगों को विशिष्ट माना जाता था और उन्हें बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वे एकेश्वरवादी थे। अन्य लोगों को पसंद है, आपकी समस्या क्या है? हम आपके सहित सभी देवताओं की पूजा करते हैं। हमें आपके भगवान होने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारे देवताओं से दिक्कत क्यों है? तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम बहुत असभ्य हो। और इसके लिए उन्होंने कई लोगों को हे दृष्टि से देखा, यहूदी लोगों को हे दृष्टि से देखा। कुछ अन्य गैर यहूदियों ने कहा, ठीक है, आप जानते हैं, वे सर्वोच्च देवता की पूजा करते हैं। यह कोई बुरा विचार नहीं है, लेकिन यह कहना कितना अधिक विशिष्टतापूर्ण था कि ईश्वर का अनुसरण केवल यीशु के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए एपोस्टोलिक चर्च को एक कीमत चुकानी पड़ी, और अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं तो हमें आज वह कीमत भी चुकाने को तैयार रहना होगा। ऐसी संस्कृतियों में जो कहती हैं, अच्छा, आपके लिए यह विश्वास करना बहुत असभ्य है कि आपका ईश्वर ही एकमात्र रास्ता है। हमें व्यक्तिगत रूप से असभ्य नहीं होना है। यह वही है जो हम मानते हैं। साथ ही इस पर विश्वास करते हुए हमें दयालु होने की जरूरत है। याद रखें, यीशु ने फरीसियों से कहा था, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। यीशु ने पापियों के साथ खाना खाया। वह उन लोगों तक पहुंचे जो बाहरी थे, जो हाशिए पर थे, जो जानते थे कि वे खो गए थे, और जो उनकी जरूरतों को जानते थे। वह उनके पास पहुंचा। और हम श्रेष्ठता की स्थिति वाले लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, हम बचाए गए हैं और आप नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से अनुग्रह द्वारा बचाए गए थे। और यही वह है जो भगवान उनके लिए भी करने की पेशकश करते हैं। इसलिए जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो हम उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो टूटे हुए हैं और जिनका भगवान ने स्वागत किया है। और हमें कुछ अद्भुत चीज मिली है जिसे हम अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं क्योंकि हमें उनकी परवाह है। लेकिन मंदिर के अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे थे। मंदिर के अधिकारी सच्चाई को दबाने की कोशिश करने के लिए सत्ता की स्थिति से काम कर रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि जब वे चुप रहने के लिए कहेंगे तो लोग कतार में खड़े हो जाएंगे और चुप हो जाएंगे। उन्हें आम तौर पर अपना रास्ता मिल गया क्योंकि वे अपना रास्ता लागू कर सकते थे। उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। वे यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि पतरस और यूहन्ना उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हें अनपढ़ माना जाता था। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे पढ़ नहीं सकते। वे लिख नहीं सके। कम से कम इसका मतलब यह है कि उनके पास उस तरह का उच्च स्तरीय कुलीन अलंकारिक प्रशिक्षण, यूनानी शिक्षा वगैरह नहीं थी जो कई सदुकियन पुजारियों के पास होती। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उन्हें साहसपूर्वक उत्तर दिया। वहां का यूनानी शब्द पारोसिया है, और प्राचीन काल में बहुत से लोग किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते थे जो पारोसिया के साथ बोलता था, जो एक प्रकार की निर्भीकता, स्पष्टवादिता थी। आप लोगों की चापलूसी नहीं कर रहे थे, आप सत्ता में बैठे लोगों से सच बोल रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों को भड़काते फिरें। पॉल रोमन अधिकारियों वगैरह का बहुत सम्मान करता था, लेकिन यहां ऐसे लोग थे जो भगवान के लिए बोलने का दावा करते थे, और वे उस उचित अधिकार को हड़प रहे थे जो इसराइल के सच्चे राजा यीशु मसीहा का था, और इसलिए शिष्यों ने बहुत स्पष्टता से बात की। उन्हें धमकी देकर भेज दिया जाता है, जिसे आमतौर पर ऐसा करने का सही तरीका माना जाता है, और वे अन्य शिष्यों, अन्य विश्वासियों के पास जाते हैं, जिनकी अब काफी बड़ी संख्या है। अब पेंटेकोस्ट के दिन के सभी धर्मांतरित लोग अभी भी वहां नहीं हैं, क्योंकि याद रखें, उनमें से कुछ प्रवासी यहूदी हैं जो संभवतः दावत के लिए आ रहे हैं। अन्य प्रवासी यहूदी हैं जो पहले से ही यरूशलेम में रहते हैं। लेकिन यह भी याद रखें कि इस बिंदु पर आने से पहले चर्च की गवाही के माध्यम से शिष्यों की संख्या बढ़ती रही है, तो बहुत सारे लोग एक साथ हैं। वे मंदिर में एकत्रित हो सकते हैं। यदि यह वास्तव में संपूर्ण समूह है, तो यह एक सार्वजनिक बैठक हो सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में वे वापस जाते हैं और एक स्वर से प्रार्थना में अपनी आवाज उठाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन सभी ने एक साथ बिल्कुल एक ही प्रार्थना की। यह कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं थी जिसे हर कोई जानता हो। यह इस अवसर के लिए एक सहज प्रार्थना थी, हालांकि लोग ईश्वर के स्तोत्रों के कुछ शब्दों को जानते होंगे जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को बनाया, उदाहरण के लिए, जिसका उपयोग बाद में अधिनियमों में भी किया जाता है, यहां तक कि अन्य जातियों को उपदेश देने के लिए भी जिन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वह पवित्र शास्त्र से था, परंतु जब वे वापस जा रहे हैं और वे विश्वासियों को प्रार्थना के लिए इकट्ठा करते हैं और वे इस प्रार्थना में अगुवाई करते हैं, तो वे कहते हैं कि राष्ट्र प्रभु और उसके अभिषिक्त के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। भजन 2, जिसे इस काल में मसीहा के रूप में समझा गया था, यह डेविडिक लाइन को संबोधित करता है और अंतः डेविडिक लाइन का प्रतीक है, जिसमें बहाली आएगी, जिसे इस समय वादा किया गया मसीहा समझा जाता है। मसीहा, हिब्रू में मसीहा का सीधा सा अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। पुराने नियम में बहुत से लोगों का अभिषेक किया गया था, लेकिन जब इस अवधि में यहूदी लोग अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में बात करते थे, तो वे विशेष रूप से अभिषिक्त राजा के बारे में सोचते थे। मृत सागर स्क्रॉल एक अभिषिक्त राजा और एक अभिषिक्त पुजारी की बात करता है, लेकिन अभिषिक्त राजा वही था जो अन्य यहूदी लोग सोचते थे जब उन्होंने इस मसीहा, डेविड के पुत्र के बारे में सोचा था। इसलिए दाऊद की संतान, अन्य लोग उसके विरुद्ध इकट्ठे हो गए थे, और जो अगुवे उसके विरुद्ध इकट्ठे हुए थे, उनका नाम उन्होंने पीलातुस और इन प्रधान याजकों के नाम रखा। परंतु प्रभु अपने शत्रुओं को लज्जित करेंगे, और इसलिए वे ईश्वर की स्तुति करते हैं और वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें निर्भीकता, पौरसिया, उसी प्रकार की निर्भीकता प्रदान करते रहेंगे जो उन्हें पहले थी, और वह चंगा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते रहेंगे कि उसके पवित्र सेवक यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार किए जा सकें। जिस सेवक यीशु का उसने अभी उल्लेख किया है, वह प्रेरितों के काम अध्याय 3 में पीड़ित सेवक है, जहां उसने विस्तार से उपदेश दिया है, लेकिन हमारे पास उस भाषण का सारांश है। दूसरे शब्दों में, जब यह व्यक्ति ठीक हो गया था, तब क्या हुआ था? और क्योंकि वह व्यक्ति महासभा के दरबार में था, वे वास्तव में कुछ भी नहीं कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा हुआ था। हर कोई जानता था कि यह आदमी चलने में सक्षम नहीं था, और अब वह वास्तव में चलने, छलांग लगाने और भगवान की स्तुति करने में सक्षम था। इसलिए वे उनमें से और चीजें मांग रहे थे। इसलिए उनके पास सार्वजनिक प्रचार के अधिक अवसर होंगे। वे चुप नहीं रहना चाहते, वे निर्भीक बने रहना चाहते हैं और बोलना जारी रखना चाहते हैं, और भगवान पर भरोसा करते हैं कि वह उनके माध्यम से काम करना जारी रखेंगे। और इसलिए भगवान प्रार्थना का उत्तर देते हैं, और 431 में यह कहा गया है कि वह स्थान हिल गया जहां वे इकट्ठे हुए थे। वे सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और साहस के साथ परमेश्वर का वचन सुनाते थे। याद रखें, विशेष रूप से नहीं बल्कि विशेष रूप से ल्यूकेट्स में आत्मा की शक्ति और प्रेरणा। आप इसे पहले से ही ल्यूक अध्याय 1 में जकरियाह के साथ देख सकते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट को उसकी मां के गर्भ से आत्मा से भर दिया गया था इत्यादि। आत्मा विशेष रूप से भविष्यवाणी या ईश्वर के लिए बोलने से जुड़ा था, और इसलिए वे साहस के साथ परमेश्वर का वचन बोलेंगे। वे परमेश्वर के लिए बोलना, उसका संदेश सुनाना जारी रखेंगे। कभी कभी यह अन्य प्रकार के भविष्य सूचक कार्यों जैसे चमत्कारों से भी जुड़ा होता है, और कभी कभी अन्य चीजों से भी जुड़ा होता है, लेकिन विशेष रूप से भगवान के लिए बोलने में सक्षम होने के साथ भरने की भाषा भी उसी से जुड़ी हुई लगती है। आप ल्यूक अध्याय 4 के बारे में नकारात्मक तरीके से सोच सकते हैं, जब भीड़ गुस्से से भर गई थी और यीशु के खिलाफ काम किया था, लेकिन यहां उनका पुनरुद्धार जारी है। आत्मा उंडेली जाती है, जगह हिल गई है। यह बहुत रुचिपूर्ण है। हम ऐसा अक्सर होने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ पुनरुत्थानों में कभी कभी इसकी सूचना मिलती है। परमेश्वर इनमें से कुछ चीजें दोबारा करता है। 20वीं सदी का पुनरुद्धार हुआ। हेब्राइड्स में 20वीं सदी के मध्य का पुनरुद्धार, मुख्य रूप से प्रेस्बिटेरियन पुनरुद्धार। और जब आरंभ में आत्मा गिरी तो वह स्थान हिल गया। लोगों को एक से अधिक स्थानों पर मकान हिलते हुए महसूस हुए। लेकिन किसी भी मामले में, जैसा कि आत्मा को उंडेल दिया गया था, आगामी पुनरुद्धार जो छंद 32 से 37 में वर्णित है, यह दिलचस्प है क्योंकि यह विशेष रूप से उनके द्वारा संपत्ति साझा करने, जरूरतमंदों को देने, जब लोग अंदर थे तब उनके पास जो कुछ भी था उसे बेचने की बात करता है। जरूरत अधिनियम 2:44:45 के साथ भी यही बात है। तो यह कट्टरपंथी है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा के बारे में केवल उस शक्ति के संदर्भ में बात करना चाहते हैं जो आत्मा हमें चीजें प्राप्त करने के लिए देती है, लेकिन वास्तव में अधिनियमों में आत्मा उससे भी अधिक गहराई तक जाती है। आत्मा हमें अंदर से बदल देती है ताकि हम खुशी से भगवान की सेवा करें। इसलिए हम भगवान और एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। इसलिए हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। यरूशलेम में बहुत सारे बहुत गरीब लोग थे और वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर किसी का ख्याल रखा जाए। खैर, अध्याय 4 और श्लोक 4 में इनमें से कुछ चीजों को अधिक विस्तार से देखने पर, जैसा कि पत्रस प्रचार कर रहा था, यरूशलेम में विश्वासियों की संख्या 5,000 पुरुषों तक पहुंच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल नहीं हैं। यह ल्यूक की गलती नहीं है कि उसके पास कुल संख्या नहीं है, क्योंकि उस समय लोग अक्सर पुरुषों की संख्या से ही गिने जाते थे। इसलिए ल्यूक को वही आंकड़ा बताना होगा जो उसके पास है। यदि पीटर और जॉन हैं, तो इस पर निर्भर करते हुए कि वे कहां उपदेश दे रहे हैं, हो सकता है कि वे केवल मनुष्यों के दरबार में उपदेश दे रहे हों। लेकिन संभावना यह है कि वे इससे आगे इसराइल के दरबार से परे उपदेश दे रहे हैं। वे जरूरी नहीं कि बाहरी दरबार में उपदेश दे रहे हों, बल्कि महिलाओं के दरबार में जो आपके इसराइल के दरबार में पहुंचने से पहले हैं और उससे आगे पुरोहितों का पवित्र स्थान था। उनमें से कोई भी नहीं जा सकता था जब तक कि वे लेवी न हों। तो शायद बहुत सी स्त्रियां भी आस्तिक हो गई थीं और बच्चे भी आस्तिक हो गए थे। 5,000 आदमी, मान लीजिए तर्क के लिए, यह कुल मिलाकर 10,000 लोगों के समान था जो यरूशलेम में विश्वासी थे। अब इतिहास की अधिकांश व्यवस्थाओं में वास्तव में चर्च में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली शताब्दी में भी ऐसा ही हुआ था। आपके साथ जो हुआ उसके बाद पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक महिलाएं यहूदी धर्म में परिवर्तित हुई। अब यह स्पष्ट था क्योंकि खतना पुरुषों के लिए दर्दनाक है और महिलाओं को खतना नहीं कराना पड़ता था। लेकिन ईश्वर से डरने वालों में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी, आंशिक रूप से क्योंकि प्राचीन भूमध्य सागरीय समाज में पुरुषों के पास धर्म परिवर्तन न करने के सामाजिक कारण थे। वे समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा खो देंगे, जबकि महिलाओं के लिए यह उतना बड़ा मुद्दा नहीं था। यरूशलेम में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन मान लीजिए कि यरूशलेम में लगभग 10,000 विश्वासी हैं। लोग कहते थे यह संभव नहीं था क्योंकि देखिए इस काल में यरूशलेम की जनसंख्या लगभग 25,000 ही थी। लेकिन पुरातत्व पर आधारित नए अनुमानों के अनुसार जनसंख्या संभवतः लगभग 85,000 के करीब है। तो 10,000 एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यह आधी से अधिक आबादी की तरह नहीं है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब हम इसकी तुलना करते हैं तो संभवतः अधिकांश फरीसी यरूशलेम में केंद्रित थे, और जोसीफस के अनुसार उनकी संख्या को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता था। कुल मिलाकर लगभग 6,000 फरीसी ही थे। वहां केवल लगभग 4,000 एसेंस थे। जहां तक मुझे याद है वह सदूकियों की गिनती नहीं करता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि उनकी संख्या फरीसियों से अधिक नहीं होगी। वे एसेंस से कम और शायद कम ही रहे होंगे। तो पहले से ही यरूशलेम में विश्वासियों की संख्या संभवतः सदूकियों की पूरी संख्या से अधिक है। कुछ लोगों ने कहा है ठीक है, अधिनियमों की पुस्तक में ये आंकड़े यथार्थवादी नहीं हो सकते हैं, और विशेष रूप से जब आप प्रेरितों के काम 21:20 पर पहुंचते हैं जहां यह कहा गया है कि यहूदिया में असंख्य हजारों विश्वासी थे। यह यरूशलेम तक ही सीमित नहीं है, यह यहूदिया में है जो कानून के प्रति उत्साही हैं। तो 10,000 यहूदी विश्वासी यानी कम से कम 20,000 और शायद उससे भी अधिक। कुछ लोगों ने कहा है कि यह संभव नहीं है क्योंकि वे गणना करते हैं ठीक है, आप जानते हैं कि यदि कॉन्स्टेंटाइन के समय तक विकास स्थिर था तो आप यरूशलेम में पहले से ही इतने सारे लोगों के साथ शुरुआत नहीं कर सकते थे जो आस्तिक थे। लेकिन कौन कहता है कि विकास स्थिर था? यदि आप इतिहास में विभिन्न पुनरुद्धार आंदोलनों को देखें तो अक्सर प्रारंभिक पुनरुद्धार में बड़े पैमाने पर प्रसार होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ एक पुनरुद्धार हुआ, दूसरा महान जागृति जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में मेथोडिस्ट चर्च को बहुत लाभ हुआ। उस आंदोलन के दौरान जब से फ्रांसिस असबरी यहाँ पहुंचे वहां पहले से ही कुछ मेथोडिस्ट थे, लेकिन जब से वह इंग्लैंड से यहाँ पहुंचे और अपनी मृत्यु के समय तक प्रचार करना शुरू किया, मेथोडिस्ट चर्च लगभग 1,000 गुना बढ़ गया। लगभग उसी अवधि में बैप्टिस्ट सैकड़ों गुना बढ़ गए। और आप कुछ अन्य स्थानों में कुछ पुनरुत्थानों को देखें, इंडोनेशिया में नियास पुनरुद्धार, उस अवधि में चर्च की भारी वृद्धि। मेरा मानना है कि यह 100 गुना से भी अधिक था। आप 1906 से शुरू होकर 20वीं सदी की शुरुआत में पेंटेकोस्टल पुनरुद्धार को देखें। अब वहां अन्य लोग भी थे, आप जानते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे, लेकिन उससे पहले अन्य लोग भी थे जो पेंटेकोस्टल जैसे थे, और बहुत से लोग अन्य आंदोलनों, पवित्रता आंदोलन इत्यादि से इस आंदोलन में आए। लेकिन 1906 से शुरू होकर जहां आंदोलन वास्तव में शुरू हुआ, हम कह सकते हैं वास्तव में बहुत तेजी से फैल गया 2006 तक, ऐसे अनुमान हैं। खैर, इन अनुमानों में केवल सांप्रदायिक पेंटेकोस्टल शामिल नहीं हैं, उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी पहचान करिश्माई के रूप में की जाती है, और इसके कुछ कारण हैं। ठीक है, ऐसे कारण हैं कि लोग अलग अलग अनुमान क्यों दे रहे हैं, लेकिन हम एक सदी में आधा अरब लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, या अगर यह सिर्फ शास्त्रीय संप्रदाय के पेंटेकोस्टल हैं, तो कम से कम कुछ 100 मिलियन लोग। अब यह अभूतपूर्व वृद्धि है। पुनरुद्धार आंदोलन अक्सर बड़े पैमाने पर विकास के साथ शुरू होते हैं, और इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है जो हमारे पास अधिनियमों की पुस्तक में है, जब आप आज समाज शास्त्रीय समानताओं की तुलना करते हैं। किसी भी स्थिति में अध्याय 4 और श्लोक 6 में अन्नास को महायाजक कहा गया है, भले ही उस समय आधिकारिक तौर पर कैफा थे। ल्यूक अध्याय 4 में दोनों को महायाजक के रूप में नामित किया गया है। अध्याय 3 और श्लोक 2 में क्योंकि फिर से उच्च इस काल में पुजारी का प्रयोग बहुवचन में किया जा सकता था, लेकिन वे दोनों उच्च पुरोहित परिवार के सदस्य थे। उन दोनों ने बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग किया और अन्य स्रोतों ने उन्हें नकारात्मक रूप से देखा। मैंने मोक्ष के लिए ग्रीक शब्द सोर्जो और सोटेरिया सजातीय संज्ञा के उपयोग के इस मुद्दे पर बात की। पीटर ने यहाँ अध्याय 4 और श्लोक 11 भजन 118 श्लोक 22 में भी उद्धरण दिया है, जिसे यीशु ने ल्यूक अध्याय 20 और श्लोक 17 में भी उद्धृत किया था। असली आधारशिला जिस पर भगवान का असली मंदिर बनने जा रहा है, वह मंदिर की स्थापना नहीं है, बल्कि वह पत्थर है जिसे बिल्डरों, नाजरेत के यीशु ने खुद अस्वीकार कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जिस स्थान पर उन्हें अस्वीकार किया गया था, उनके सूली पर चढ़ने का स्थान भी एक पत्थर की खदान के पास बनाया गया था, तो वस्तुतः वहां बहुत सारे अस्वीकृत पत्थर भी थे। पदानुक्रम के बजाय ईश्वर के अधिकार के संदर्भ में जब वे अपने चुनौती देने वालों से साहस के साथ बात करते हैं, तो दार्शनिक अक्सर लोगों के बजाय ईश्वर की आज्ञा मानने पर जोर देते हैं। सुकरात इसके लिए जाने जाते थे, और इसलिए वास्तव में जब पीटर अध्याय 5 में फिर से ऐसा कुछ कहता है, तो जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह सुकरात के काफी करीब है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीटर और जॉन को यह पता रहा होगा। हालांकि ग्रीक शिक्षा तक अधिक पहुंच रखने वाले सदूकियों ने शायद उस भ्रम को पहचान लिया होगा जिसका इरादा पीटर का नहीं था, लेकिन साथ ही इस प्रकार की निर्भीकता पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रतिरूपित की गई है। नाथन, हे राजा, आप ही मनुष्य हैं, या एलियाह जो अहाब और इस प्रकार इजेबेल का सामना करता है, या यिर्मयाह, उन्होंने राजाओं का सामना किया, उन्होंने अधिकारियों का सामना किया, उरियाह ने ऐसा किया और उसे शहादत का सामना करना पड़ा, यिर्मयाह अध्याय 26। उत्पीड़न के बावजूद परमेश्वर की स्तुति करना। याद रखें कि यीशु ने लूका अध्याय 6 लूका के पहले खंड में क्या कहा था, जब वे तुम्हें सताते हैं, जब वे तुम्हें झूठे भविष्यद्वक्ता कहते हैं, तब आनंदित होते हो, आनंद से उछल पड़ते हो, क्योंकि यह वैसा ही है जैसा उनके पूर्वजों ने उन भविष्यद्वक्ताओं के साथ किया था जो तुमसे पहले थे। पौलुस भी इसी प्रकार आनंदित होता है। पौल और सीलास जब प्रेरितों के काम अध्याय 16 और पद 25 में उन्हें पीटा जाता है, तो वे आधी रात को परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं, जैसा कि भजन 119 में बताया गया है। वे आधी रात को भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अन्य कैदी उन्हें सुन रहे हैं। और जब वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो क्या होता है? खैर, यहाँ अध्याय 4 में वह स्थान हिल गया है जहाँ वे इकट्ठे हुए थे। वहाँ अध्याय 16 श्लोक 26 में भी स्थान हिल गया है। उनमें सचमुच भूकंप आ जाता है और उनके बंधन खुल जाते हैं। 4:24 में वे भजन 146 श्लोक 6 को प्रतिध्वनित कर रहे होंगे। ईश्वर जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है बनाया। श्लोक 25:26 जैसा कि हमने बताया, भजन 2:1-2 को प्रतिध्वनित करता है जहां अभिषिक्त मसीहा पर लागू होता है। और श्लोक 28 में भगवान, आपने इसे पहले से ही निर्धारित कर दिया है। पुराने नियम की तरह परमेश्वर अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए दुष्टों का भी उपयोग कर सकता है। क्रॉस उसकी योजना थी। शासकों का इरादा बुराई के लिए था, लेकिन परमेश्वर का इरादा भलाई के लिए था, यूसुफ के लिए भाषा का उपयोग करना। या आप सोचिए कि कैसे यशायाह अध्याय 10 में अश्शूर इसराइल के उत्तरी राज्य को अनुशासित करने के लिए भगवान के क्रोध की छड़ी थी, परंतु जब परमेश्वर ने उनके अहंकार के कारण उनका उपयोग करना समाप्त कर दिया, यह सोचकर कि वे इसे अपने आप कर रहे थे, तो परमेश्वर उनका भी न्याय करने वाला था। परमेश्वर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी योजना के हिस्से के रूप में दुष्टों का भी उपयोग कर सकता है, भले ही यह उनका इरादा नहीं है। ईश्वर के पास आप ईश्वर की संप्रभुता को देखें, और इसे देखने के विभिन्न तरीके हैं। इसे समझने का मेरा तरीका यह है कि ईश्वर इतना संप्रभु है कि वह लोगों को कुछ हद तक स्वतंत्र विकल्प की अनुमति देकर भी अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम है, ताकि लोग अपने क्षेत्र के भीतर जो कुछ भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी उनके पास हो। परंतु परमेश्वर फिर भी उन अंतिम उद्देश्यों को पूरा करता है। वह पहले से जानता है कि वे क्या करने जा रहे हैं और साथ मिलकर काम करता है। परमेश्वर कितना संप्रभु और शक्तिशाली है। एक बिंदु पर मैंने इस विषय पर नोट्स लेने के लिए पूरी बाइबल पर काम किया, और मैं विशेष रूप से भगवान की संप्रभुता पर जोर देने से आश्चर्यचकित था, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसका हमें सबसे अधिक सामना करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसे हम, आप जानते हैं, हमारे सामान्य दैनिक जीवन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। परंतु परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारे सिर का एक बाल भी अलग नहीं होता। लोग हमारे साथ बुरा कर सकते हैं, लेकिन अंततः परमेश्वर के उद्देश्य उसके चर्च के लिए और हम में से प्रत्येक के लिए अनंत काल तक प्रबल रहेंगे। साहस के लिए प्रार्थना। पुराने नियम में कुछ लोगों को जब उन पर अत्याचार किया गया तो उन्होंने प्रतिशोध के लिए प्रार्थना की। 2:24:137 and 15। लेकिन यहाँ प्रार्थना साहस और संकेतों के लिए है, जैसा कि श्लोक 9 में भगवान ने साहस प्रदान किया था। याद रखें, ल्यूक 11:13 में यीशु ने वादा किया था कि भगवान मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। खैर, यहाँ वे पूछते हैं, यह आता है, पवित्र आत्मा साहस देता है। और श्लोक 33 में यह कहा गया है कि प्रेरित शक्ति के साथ गवाही देना जारी रखते हैं। संभवतः जिस तरह से भाषा का उपयोग किया जाता है उसका मतलब है कि संकेत होते रहेंगे। और फिर इस अध्याय के शेष भाग में हमारे पास विरोधाभासी उदाहरण हैं। हमारे पास जोसेफ बरनबास है जिसने एक खेत बेचा। इसका मतलब यह नहीं है, आप जानते हैं, लोगों ने अनिवार्य रूप से अपनी सैंडल, अपने लबादे और इस तरह की चीजें छोड़ दी। परंतु उसने एक खेत बेच दिया और धन प्रेरितों को दे दिया। प्रेरितों के पास गरीबों को दिए जाने वाले उपहारों की निगरानी थी। यदि आपके पास निरीक्षण करने वाला कोई है तो यह अधिक कुशल है। तो लोग इस काम में अपना योगदान दे रहे थे। वे जानते थे कि प्रेरित भरोसेमंद ईमानदार लोग यीशु की शिक्षा का पालन करने वाले और यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने वाले लोग थे। इसलिए यीशु ने गरीबों की देखभाल के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। इसलिए नेता पैसा बांटने में सक्षम हैं। यह अध्याय 6 में एक मुद्दा बनने जा रहा है जब वे उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां वे इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं और उन्हें प्रतिनिधि बनाना होगा। लेकिन किसी भी मामले में जोसेफ यहां एक अच्छा उदाहरण है। यूसुफ को लोग बरनबास कहते हैं। उपनाम आम थे। जोसेफ एक सामान्य नाम था। यह निर्दिष्ट करने के लिए कि यह जोसेफ कौन है, आपको इसके साथ एक और नाम की आवश्यकता है। इसलिए उदाहरण के लिए यह जोसेफ बारसबास नहीं है, जो संभवतः सप्त के दिन पैदा हुआ था। इसीलिए उसे सप्त का पुत्र बरसबास कहा जाता है। लेकिन यहां हमारे पास जोसेफ बरनबास हैं, और वह साइप्रस का एक लेवी है। साइप्रस में एक महत्वपूर्ण यहूदी समुदाय था। और अध्याय 11 और श्लोक 20 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइप्रस और साइरेनियन यहूदियों ने अन्य जातियों को संदेश फैलाना शुरू किया। ठीक है, आप जानते हैं, उन्हें यरूशलेम से खोजा गया था। बरनबास उनमें से एक हो सकता है जो सबसे पहले इस संदेश को अन्य जातियों तक फैला रहा था, भले ही ल्यूक पॉल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि पॉल उसका मुख्य स्रोत भी है। लेकिन यह भी कि जोसेफ बरनबास एक साधन संपन्न व्यक्ति था, हम उस बात से पता लगा सकते हैं जो ल्यूक हमें नहीं बताता है, क्योंकि मार्क उसका चचेरा भाई या उसका रिश्तेदार था, हम कुलुस्सियों के अध्याय 4 में पढ़ते हैं। इसलिए जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 12 श्लोक 12 और 13 में जॉन मार्क की मां के घर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके पास एक नौकर है, उसका एक बाहरी द्वार है। शायद इसका मतलब है कि वह ऊपरी शहर में रहती है, उसका काफी अच्छा घर है। तो जोसेफ एक प्रवासी यहूदी है। मूल रूप से वह प्रवासी भारतीयों से है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जिसके पास साधन हैं और वह यरूशलेम में बस गया है। लेकिन इसकी तुलना एक अन्य उदाहरण से की जाती है। 4:36:37 में सकारात्मक उदाहरण जोसेफ बरनबास है। लेकिन 5:11 में हमारे पास एक नकारात्मक उदाहरण है, और वह उदाहरण हनन्याह और सफीरा का उदाहरण है। हम उनके बारे में बाइबल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सफीरा एक ऐसा नाम था जिसका मतलब सुंदर होता था। यह विशेष रूप से पुरोहित वर्ग के बीच आम था। इसलिए पुरुष आम तौर पर धन के मामले में सामाजिक रूप से उनसे ऊपर शादी नहीं करते थे। कभी कभी वे ऐसा करते थे, लेकिन आमतौर पर नहीं। तो संभवतः वे काफी संपन्न थे। अध्याय 5:1-11 हमें उन लोगों का नकारात्मक उदाहरण देता है जिन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, जिन्होंने कहा कि वे इस पुनरुद्धार का हिस्सा थे, लेकिन यह केवल सतह पर था, ये सिर्फ दिखावा था। पुनरुत्थान के समय में जब लोग खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं, तो आप इसका दिखावा नहीं करना चाहेंगे। आप वास्तविक चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए प्रेरितों को शिविर में पाप को संबोधित करना होगा, और यहां हमारे पास न्याय का मुद्दा है। और यहां की ग्रीक भाषा में कुछ यहोशू अध्याय 7 के ग्रीक अनुवाद की प्रतिध्वनि है, जहां हम यहूदा के गोत्र के आकान के बारे में पढ़ते हैं, जिसने जेरिको की लूट का कुछ हिस्सा अपने लिए रख लिया था। उन्हें अपने लिए नहीं रखा जाना था। ये पवित्र चीजें हेरेम के लिए अलग रखी गई थीं। वे विनाश के प्रति समर्पित थे। उन्हें नष्ट किया जाना था क्योंकि वे जेरिको के पाप से इतने दूषित थे। और इसे अपने पास रखकर उसने पूरे समुदाय पर फैसला सुनाया। आज हम कभी कभी पाप को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए एक कुरिन्थियों अध्याय 11 में यह श्लोक 30 के आसपास है। पॉल कहता है, यही कारण है कि तुम्हारे बीच बहुत से कमजोर और बीमार हैं और कुछ मर गए हैं, क्योंकि वे मसीह के शरीर को ठीक से नहीं पहचान रहे थे, और ऐसा लगता है कि इसने उनके बीच उपचार के उपहारों के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है। और पॉल, आप जानते हैं, यही एकमात्र कारण नहीं है कि लोग बीमार पड़ सकते हैं और मर सकते हैं, लेकिन समुदाय के बीच में पाप था। कभी कभी पुराने नियम के अनुच्छेद उसे जड़ से उखाड़ने, उस पाप को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं। एक कुरिन्थियों 5 किसी पापी को फांसी देने के लिए समुदाय के बीच से बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए व्यवस्था विवरण की भाषा का उपयोग करता है, क्योंकि चर्च स्पष्ट रूप से लोगों को फांसी नहीं देता है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को चर्च से बाहर निकालने के लिए करता है जो बहुत ही सार्वजनिक और ज्ञात पाप कर रहा है। ऐसे में इस पुरुद्धार के बीच यह एक निजी पाप भी था। खैर, यह सार्वजनिक था, लेकिन यह कोई पाप नहीं था। कार्रवाई सार्वजनिक थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। लेकिन आज हम पाप को हमेशा गंभीरता से नहीं लेते हैं, और हम समुदाय पर भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं। अधिनियम 5:1-4 तक मृत सागर स्क्रॉल में सदस्यों को परीक्षण अवधि के बाद अपनी संपत्ति सौंपने की आवश्यकता होती है। पाइथागोरस, जो एक ग्रीक दार्शनिक संप्रदाय है, को भी सदस्यों को परीक्षण की अवधि के बाद अपनी संपत्ति सौंपने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वास्तव में समुदाय में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि आरंभिक ईसाइयों के पास कोई नियम नहीं था, इसलिए पतरस ने उनसे कहा, क्या यह तुम्हारा अपना न था? आपने यह स्वेच्छा से किया। इसलिए आरंभिक ईसाइयों के पास कोई नियम नहीं था। आपको अपना सारा पैसा हमें देना होगा। आपको अपनी संपत्ति हमें देनी होगी। यह प्यार की वजह से था। और यहां निर्णय अधिक गंभीर है, इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या नहीं दिया, बल्कि प्रतिबद्धता के उनके दिखावे के कारण। ल्यूक के सुसमाचार में पाखंडी बहुत अच्छे नहीं लगते थे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाखंडी फरीसियों के संप्रदाय से है या पाखंडी ईसाई होने का दावा करता है। भगवान को पाखंडी लोग पसंद नहीं हैं। इससे सुसमाचार के प्रसार को ठेस पहुंचती है। खैर, डेडसी स्क्रॉल्स ने ऐसे अपराधी को 1 साल के लिए सांप्रदायिक भोजन से बाहर कर दिया, और अंततः यदि वे दूसरी बार पकड़े गए तो उन्हें समुदाय से स्थायी रूप से बाहर कर दिया जाएगा। आम तौर पर चर्च ने यही किया होगा, लेकिन इस मामले में वे मारे गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हारून के दोनों पुत्रों ने पवित्र अग्नि से खेला और आग निकली और उन्हें मार डाला। कभी कभी जब लोग पवित्र चीजों को अपवित्र मान लेते हैं तो परमेश्वर निर्णय देता है। जब परमेश्वर आत्मा को उंडेल रहा हो तो पुनरुत्थान पवित्र होता है, और हम इसे नकली नहीं बनाना चाहते। हम उस समय के दौरान आत्मा के कार्य के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, और हम इसके लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन पुनरुद्धार की भी एक कीमत होती है, और पवित्रता वह चीज है जो पुनरुद्धार के समय में महत्वपूर्ण है। हम यह भी देखते हैं कि चमत्कार बढ़ते हैं। उन्होंने निर्भीकता के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ठीक करते रहें, और ऐसा होता है। इसके बाद लोग हल्के समुदाय में शामिल होने से डर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग आस्तिक बनने से डरते थे, लेकिन वे आस्तिक बनने और चर्च में शामिल होने से डर रहे थे जब उन्होंने सुना कि अनन्या और सफीरा के साथ क्या हुआ। अगर वे वास्तव में खुद को मसीह के प्रति समर्पित नहीं करने जा रहे थे। इसमें कहा गया है कि इससे लोगों में डर पैदा हो गया, वैसा ही जैसे पुराने नियम में किसी को फांसी दी गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को दोबारा यह पाप करने से डराना था। अब न्याय के इस कार्य से परे चमत्कार बढ़ जाते हैं। अधिकांश चमत्कार उपचारात्मक होते हैं। लोग बीमारों को सड़कों पर लाते हैं ताकि जब पतरस वहां से गुजर रहा हो, शायद मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा हो, तो उसकी छाया भी उन्हें छू ले। लोगों को लगा कि परछाई उस शख्स से जुड़ी हुई है। इसीलिए कई यहूदी लोग सोचते थे कि यदि आपकी छाया किसी शव को छूती है या आपकी छाया किसी कब्र को छूती है तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, और इसलिए लोग यही सोच रहे थे। परंतु पतरस के द्वारा आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग इसके द्वारा प्रभावित हो रहे थे। 2 राजा 13 को याद करें। मेरा मानना है कि यह वही है जहां एलिशा एक बीमारी से बीमार था जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और फिर भी वह ईश्वर की शक्ति से इतना भरा हुआ था कि जब उन्होंने उसकी हड्डियों के ऊपर एक शव डाला तो वह शव जीवित हो गया। ल्यूक अध्याय 8 में यीशु को याद करें। एक महिला आगे बढ़ती है और उसके कपड़ों को छूती है, और वह कहता है, मुझे लगा कि मेरे अंदर से शक्ति बाहर चली गई है। प्रेरितों के काम अध्याय 19 में पॉल से कपड़े ले लिए गए और लोगों को उन कपड़ों के माध्यम से चमत्कारिक ढंग से ठीक किया गया और राक्षसों को इस तरह से बाहर निकाला गया। हम ऐसा हर समय घटित होते हुए नहीं देखते। अक्सर ऐसा होता है, आप जानते हैं, वे पॉल की तरह कह रहे हैं कि किसी को विश्वास है कि उसे ठीक किया जा सकता है, और वह कहता है कि यीशु के नाम पर ठीक हो जाओ इत्यादि। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की आत्मा इतनी नाटकीय ढंग से उंडेली जाती थी कि वह तीव्रता के इस स्तर पर भी हमारे पास होती है। अब इससे जो समस्या आई वह यह है कि जब आपके पास चमत्कार होते हैं तो बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित होने की अधिक संभावना होती है। यह बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग भगवान की ओर मुड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जो लोग भगवान की ओर नहीं जा रहे हैं वे आपकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते, और इसलिए अगले पाठ में हम देखेंगे कि वे सदूकियों के साथ फिर से परेशानी में पड़ जाते हैं। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम अध्याय 3 से 5 पर 17:8 है।